मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 30 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि कल YouTube पर एकेडमी ने एक प्रोग्राम डाला है जिसका संबंध है जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर यानी कि मेंस के जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर के सिलेबस से संबंधित। फोर्थ पेपर का सिलेबस क्या है इसकी व्याख्या मैंने उस YouTube के प्रोग्राम में की है। आप सबके लिए एक छोटी सी सूचना है कि यदि आपकी जरा भी उसमें रुचि हो तो आप वह प्रोग्राम देख सकते हैं। मित्रों मैं छोटी सी यहां इजाजत आप सबसे चाहूंगा और वो इजाजत यह कि आप लोगों के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 4 सीरीज इसी पर तैयार किए हैं। इसी सीरीज में 4 वीडियो तैयार किए हैं कहना चाहिए, जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर पर, सेकेंड पेपर पर, थर्ड पेपर पर और फोर्थ पेपर पर, और इन चारों में सिलेबस की चर्चा की गई है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि ये जो YouTube के चारों प्रोग्राम हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। एक प्रकार से तैयारी का उनका फाउंडेशन है क्योंकि जब तक सिलेबस हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए तब तक हम क्या पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, विशेष अर्थ तो नहीं ही रह जाता है। हम सब बहुत ही केंद्रित होकर के फोकस्ड तरीके से तैयारी कर सकें इसके लिए जरूरी होता है कि हम सिलेबस को बहुत अच्छे से जाने ही नहीं बल्कि हमारी बहुत अच्छे से पकड़ हो और हमारे दिमाग में रच बस जाए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस कागज में रहने की चीज नहीं है, सिलेबस कागज से उठकर हमारे दिमाग में आ जाने की चीज है, उसका कारण है। कारण यह है फ्रेंड्स कि जो मेंस एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अब पार्ट देखिए आप जो भूमिका है वो करंट अफेयर्स का हो गया है। अब उस पर तो कोई दो राय रही नहीं गई है। अब करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप करते क्या है, ज्यादातर आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, यही सब करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं सुबह का अखबार पढ़ रहा हूं और अखबार में ढेर सारी खबरें हैं तो अब मैं ये कैसे समझूंगा कि कौन सी खबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है और किस एंगल से इंपॉर्टेंट है। तो बट नेचुरल है कि अगर मेरे दिमाग में 2 चीजें मौजूद होंगी तभी मैं इस बात का फैसला कर सकूंगा, सही फैसला कर सकूंगा। पहला तो यह है कि क्या इसका संबंध मेरे सिलेबस से है, तो आप बार बार तो सिलेबस पलट करके देखेंगे नहीं, मेरे दिमाग में अगर सिलेबस है तो मैं फट से पकड़ लूंगा कि हाँ ये तो मेरे सिलेबस का हिस्सा है। और इसके बाद दूसरा है अनसॉल्व्ड पेपर कि क्या इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, इस टॉपिक के आसपास से प्रश्न पूछे गए यानी कि इस प्रजाति से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर वो मेरे दिमाग में है तो इमीडिएट मैं ये समझ लूंगा कि नहीं नहीं ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे मैं ये समझ लूंगा उसे मैं ध्यान से पढ़ूंगा, बाकी चीजों को मैं छोड़ दूंगा। इसलिए मुझे लगता है मित्रों कि जो एक सीरीज है जिसमें हम लोगों ने सिलेबस की चर्चा की है उसके तहत जो 4 वीडियो तैयार किए गए हैं ये आप सबको बहुत ध्यान से सुनने चाहिए बल्कि बार बार कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों जहां तक आज मुख्य विषय का प्रश्न है, हम लोग सरपंचों की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में 3 दिन पहले खबर आई थी कि केंद्र सरकार राज्यों को लिखने वाली है, उसी विषय पर आज कुछ बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक खबर आप लोगों ने अखबार में पढ़ी होगी, कल भी थी और आज भी है, और आज तो उस खबर को लेकर के कुछ एडिटोरियल कमेंट भी लिखे गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है। मित्रों खासकर देख रहे हैं आपकी पद्मावती फिल्म के रिलीज को लेकर के मामला किस तरीके से गर्माता चला जा रहा है और अब इससे ढेर सारे प्रश्न उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला फिर से गया था, खासकर इंग्लैंड में ये फिल्म रिलीज होनी थी उसको लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे तो रिजेक्ट कर दिया कि, लेकिन जो एक टिप्पणी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्पणी उन्होंने ये की कि सरकार में सार्वजनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें अभी फिल्म के बारे में इस तरीके से कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खासकर उनका इशारा इसी तरफ था, आप देख रहे हैं कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने पद्मावती फिल्म को अपने यहां रिलीज करने से बैन कर दिया है। जबकि देखिए सबसे बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि पद्मावती फिल्म रिलीज तो होने की बात छोड़िए, अभी तो उसको फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाया, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का। और इसके लिए जो मुफीद एजेंसी है, जो सही मायने में जो कानूनन जो एजेंसी है, वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जिसे हम सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं। उसने अभी कोई कुछ नहीं कहा है ये फिल्म रिलीज हो रही है नहीं हो रही है। तो बिना उसके प्रमाण के ही लोगों ने एक प्रकार से अपनी तरफ से घोषणाएं करने शुरू कर दी। तो खासकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग, चलिए जनता तो अपनी तरफ से कर रही है, जो भी है वो भीड़ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनसे एक अलग तरह की सतर्कता की मांग की जाती है। लेकिन विडंबना देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ही कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि नहीं, हम भी अपने यहां रिलीज होने नहीं देंगे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आपको एक दिखाई देगी, बहुत ही विरोधाभास की स्थिति दिखाई देगी। मित्रों, तो ये इस टिप्पणी को आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है और ये आपके कहीं एनालिसिस में काम आ सकती है। दूसरी जो खबर है दोस्तों, वो है अखबारों में है, आपने पढ़ा होगा और न्यूज में भी वो खबर थी कि भारत और सिंगापुर के बीच में एक समझौता हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। और उस समझौते के तहत ये है, नेवी के क्षेत्र में है कि जो हमारे जो भारतीय जो युद्धपोत होंगे, जो पनडुब्बियां होंगी, जो जहाज होंगे, वो सिंगापुर का एक नौसैनिक अड्डा है चांगी, इसका नाम याद रखिएगा चांगी, ये सिंगापुर का नौसैनिक अड्डा है, वहां हमारी युद्धपोत बकायदे जा सकेंगे, रुक सकेंगे, और अगर उनको कोई रक्षा संबंधी साजो सामान की जरूरत हुई तो वह भी वो ले सकेंगे। यह एक समझौता हुआ है। इस समझौते को मैं महत्वपूर्ण न्यूज के रूप में आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं मित्रों, उसका बहुत ही स्पष्ट कारण है और शायद आप समझ भी गए होंगे अगर आप थोड़े से भी लंबे समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो। क्योंकि जो दक्षिण चीन सागर है, आप देख रहे हैं कि चीन किस तरीके से इस प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, जहां अपने आसपास के क्षेत्र में जहां चीन है, लगातार अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो जो इंटरनेशनल ओपिनियन है उनको भी स्वीकार नहीं कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। और लगातार चीन का जो एक साम्राज्यवादी मंसूबा है वो फैलता चला जा रहा है। यह माना जा रहा है कि भारत और सिंगापुर के बीच में यह जो समझौता हुआ है वह चीन को कहीं न कहीं, जो दक्षिण चीन सागर है उसमें घेरेगा, यानी कि प्रतिबंध लगाएगा, प्रतिबंध नहीं तो उसको थोड़ा सा कमजोर करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने कहा कि पॉइंट है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है दोस्तों, 2013 से जो अभी नया पैटर्न मेंस का शुरू हुआ है, आप उनके अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि एकाध साल कभी मिस हुआ हो, अदरवाइज चीन को लेकर के कोई न कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है ऑलमोस्ट। और जो चीन से प्रश्न पूछा जाता है चीन को लेकर के, वो भारत के सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर के ही पूछा जाता है। जैसे 2017 में ही देखिए, 2017 का जो सेकेंड पेपर है जनरल स्टडीज का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। प्रश्न है, चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, इस कथन के प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए होना चाहिए, लेकिन चलिए जो भी ट्रांसलेशन हुआ कोई बात, यह प्रश्न पूछा गया। तो स्वाभाविक रूप से उसके तहत सिंगापुर से जो भारत का समझौता हुआ है यह बहुत मायने रखता है। मित्रों, एक जो और छोटी सी खबर है वो उत्तर कोरिया को लेकर के है। आप देख रहे हैं कि उत्तर कोरिया लगातार एक अपने मिसाइल्स के परीक्षण कर रहा है और उसको लेकर के पूरी दुनिया चिंतित भी है, लग रहा है जैसे कि अब तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है। अमेरिका और जो खासकर जापान है वो लगातार वक्तव्य दे रहे हैं, विश्व के लिए एक चिंता का कारण तो है ही है। तो बस ये तो लगता है कि उत्तर कोरिया की जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसका एक प्रमाण है, और इस तरह की खबरें तो आप बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, तो मैंने यूं ही इसकी थोड़ी सी चर्चा कर दी है। मित्रों, अब मैं आता हूं अब आज के मुख्य विषय पर। दोस्तों, ये जो मुख्य विषय के रूप में मैंने इस विषय का चुनाव किया है कि सरपंचों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि जब पहली बार मैंने इसकी चर्चा की थी तो बहुत स्पष्ट शब्दों में आप सबसे कहा था कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे रीजन है दोस्तों, रीजन ये है कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है जिसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, राइट। और आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, ऑलमोस्ट पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, उसकी नींव है, तो हम उसे अस्वीकार भी नहीं कर सकते कि इतने सरल प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में तो क्वेश्चन पूछना बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछना है, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर सामान्य बातें कहना तो आसान है, लेकिन व्यावहारिक संविधान के दायरे में बातें कहना आसान नहीं है, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, इतना कठिन काम नहीं है लेकिन इतना सरल भी नहीं है। अब आप देखिए कि 2017 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के क्या प्रश्न पूछा गया था, राइट। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। पहला ही प्रश्न है सेकंड पेपर का, जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर का पहला ही क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। ये इन्वर्टेड में है, ये स्टेटमेंट है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अब आप देखिए कि यह बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आपको लगेगा जैसे कि ये 12वीं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या में पूछा जाने वाला प्रश्न हो, लेकिन यही इसकी चुनौती है कि आप जो सुधार के लिए विचार प्रस्तुत करेंगे वो कितने वैलिड हैं, वो कितने व्यावहारिक हैं, कितने नए हैं, कितने प्रभावशाली हैं। जो नंबर आपको मिलेंगे वो इसी आधार पर मिलेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है कि समालोचनात्मक परीक्षण, एक तो जो आपका परीक्षण होगा वो बहुत ही तथ्यात्मक होना चाहिए, ऊपरी ऊपरी नहीं होना चाहिए जो हम पहले से पता नहीं कब 11वीं 12वीं से 10वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पंचायती राज्यों की क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, नॉट एट ऑल। आपको खासकर पिछले 2-3 सालों के दौरान क्या चीजें ऐसी उभर कर आई हैं जिससे यह सिद्ध होता हो रहा है कि जो पंचायती व्यवस्था है हमारी, स्वशासन से व्यवस्था है, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पा रही है, वो आपके अगर अध्ययन में है, ध्यान में है, तभी आप आलोचनात्मक परीक्षण कर सकेंगे। अदरवाइज अगर सिंपल सिंपल तरीके से आप बात कर देंगे तो नंबर्स मिल जाएंगे लेकिन वो सिंपल नंबर मिलेंगे। तो इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि चूंकि सरपंचों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करने का विचार सीधे सीधे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है और यह संविधान से भी जुड़ा हुआ है और बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट भी है, यह बहुत ही विवादास्पद है, इसलिए अगले साल के मेंस के लिए आप इसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक मान सकते हैं। और मैं तो राजस्थान और हरियाणा ऐसा पहले कर भी चुके हैं, उस समय यह बहुत हॉट टॉपिक हुआ था जिसकी चर्चा मैं इससे पहले कर चुका हूं। आइए अब थोड़ा सा इसे देख लेते हैं जो भी समय बचा हुआ हो। जो हरियाणा सरकार है, देखिए उसने किया क्या था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो पुरुष हैं उनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं होनी चाहिए, 10वीं तक वो पढ़े लिखे हों, और जो महिलाएं हैं उनकी योग्यता 8वीं तक होनी चाहिए, उनकी उनके लिए थोड़ा सा कम शैक्षणिक योग्यता रखी थी, और जो दलित वर्ग से हैं उनको 5वीं पास होना चाहिए, यह उन्होंने शैक्षणिक योग्यता रखी। दूसरी योग्यताएं कुछ और रखी थी, जैसे उनके ऊपर एग्रीकल्चर का लोन नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल का बकाया नहीं रहना चाहिए, फिर उनके घर में शौचालय होना चाहिए, इस तरह की कुछ और योग्यताएं उन्होंने जोड़ी थी। खैर, अब आप देखिए इसके दो पक्ष होते हैं, इसके पक्ष में आप बात कर सकते हैं कि हां ये सही है, इसके बाद होता है कि नहीं ये पूरी तरह से गलत है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके लिए तथ्य कहां से लाते हैं। देखिए, सही है कि जब हम बात लेते हैं मित्रों तो सीधी सी बात है कि धीरे धीरे आप देखिए कि अब पंचायतों को बहुत अधिकार दिए जाने लगे हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं, सुपरवाइजरी पावर्स भी हैं, मतलब अब गांव की तो सारी योजनाएं पंचायतों के जरिए ही लागू हो रही हैं, उन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का इतना फंड्स उनके पास जा रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए उनके पास सचिव हैं, मतलब अब वो पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई कि उनको केवल गांव के छोटे मोटे झगड़े निपटाने हैं, थोड़े मोटे छोटे मोटे विकास के काम देखने हैं, अब तो वो एक तरीके से लोकल एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब सीधी सी बात है कि अगर उनके हाथ में इतने दायित्व और इतने अधिकार दे दिए गए हैं तो स्वाभाविक है कि उनके निर्वाह के लिए कुछ न कुछ ज्ञान तो होना आवश्यक है। ठीक है, यह बात अलग है कि जो नेतृत्व होता है वो कोई ज्ञान का मोहताज नहीं होता कि उसे डिग्री चाहिए, लेकिन जो व्यक्तित्व का विकास है, जो चेतना का विकास है, उसके लिए कुछ न कुछ एक स्तर की योग्यता तो जरूरी होती है, जैसे उन्हें कम से कम अक्षर ज्ञान तो हो कि वो चीजों को पढ़ सकें। वे सरकार आदेश भेज रही है, उन्हें कैसे काम करना है ये चीजें भेज रही है, सिस्टम भेज रही है, नियम कानून भेज रही है, तो कम से कम उनको पढ़ तो सकें, समझ तो सकें, लिख तो सकें, और इससे भी बड़ी बात कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज तो हो, क्योंकि उनको ढेर सारे फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, उनकी भी देखरेख करनी है। तो अब आप समझिए कि जहां इतना फंड हो और इस तरह के अधिकार हो, अगर ये सारे के सारी चीजें कैसे व्यक्ति के हाथ में है जिसको बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा। लेकिन उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो सचिव हैं, उनको तो अक्षर ज्ञान है, वो तो जानकार लोग हैं। तो ऐसे लोगों का अगर गलत उपयोग करने लगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या होगा, इससे नुकसान किसका होगा। स्वाभाविक है कि नुकसान अंततः गांव का होगा और अंततः डेमोक्रेसी का होगा। अगर हम बड़े रूप में देखें तो डेमोक्रेसी का नुकसान होगा। ठीक है, तो अब इसके विपक्ष में क्या बातें कही जाती है। विपक्ष में दो तीन बातें कही जाती है। देखिए, पहली तो बात यह है कि इस अगर हम ऐसा कर देते हैं तो एक तो हमारा जो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, जैसे समावेशी विकास अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है ना, तो लोकतांत्रिक समावेशी नहीं होगा, मतलब ढेर सारे लोग इससे बाहर हो जाएंगे, चुनाव लड़ने के अधिकार से बाहर ही हो जाएंगे। फिर हम ये सोचते हैं कि जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी रुक जाएगा। फिर वो अनुच्छेद 15 का हवाला देते हैं, जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15, जिसमें एक जो बात कही गई है कि केवल धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा, राइट। तो कहते हैं कि ये चुनाव अगर लड़ नहीं सकते हैं तो ये विभेद हो गया। हालांकि अच्छी बात है कि वोटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, वोट देने के अधिकार सबको है, केवल चुनाव लड़ने तक की बात है। अब इसकी व्याख्या आपको अपने ढंग से करनी है, क्योंकि जो अनुच्छेद 16 है, देखिए अनुच्छेद 16 में ही फिर एक किया गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहां लोक नियोजन का मतलब समझ लीजिए कि गवर्नमेंट सर्विसेज में, उसमें भी अवसर की समानता की बात है। लेकिन अवसर की समानता कैसे है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन तो दिया हुआ। अगर आज कोई प्यून भी बनना चाहे, फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहे, बैंक में जाना, किसी में भी जाना चाहे, तो वहां न्यूनतम योग्यता है। तो अगर चूंकि जो जनप्रतिनिधि है अब वह एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया है, उसके हाथ में अधिकार हो गए हैं, तो अगर सरकार न्यूनतम योग्यता रख रही है, शैक्षणिक योग्यता, और वो भी कोई बहुत हायर लेवल की नहीं रख रही है, अक्षर ज्ञान लिखने पढ़ने की सुविधा तक ही है, तो उस हिसाब से बहुत गलत भी नहीं लगता। लेकिन जब आप इंक्लूसिव डेमोक्रेसी और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो वहां तो डेफिनेटली परसेंटेज उनके थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन इसकी काट यह है कि लेकिन वोटिंग पावर्स तो उनके कम नहीं होंगे, वोटिंग पावर्स तो सबके पास रहेंगे। इसमें एक बात और कही जाती है मित्रों, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कि अमेरिकन पद्धति की बात की जाती है। वहां ऐसी कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, बल्कि तो वहां तो जो जुडिशरी है उस तक में उस तरह की योग्यताएं नहीं रखी गई हैं, उसमें भी नागरिक होते हैं। वहां जूरी पद्धति है, जुडिशरी की जो पद्धति है वो जूरी पद्धति है। वक्त नहीं है कि मैं उस पद्धति के बारे में बात कर सकूं। वहां मालूम है आपको योग्यता क्या है, आप सुनकर के आपको मजा आ जाएगा। आपका जो सी सेट का पेपर है ना, उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, आपको मालूम है अनुच्छेद आते हैं, अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं, है ना, अपठित गद्यांश बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं। वहां जो योग्यता है ज्यूरी मेंबर बनने की, सोचिए कि इंग्लिश कंप्रेहेंशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश कंप्रेहेंशन, मतलब अंग्रेजी भाषा का बोध होना चाहिए बस, आपको जरूरी नहीं कि आपने LLB किया हुआ हो। तो कहते हैं कि जब वहां इतने स्पेशलाइज्ड काम के लिए योग्यता नहीं रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता, तो भारत को सरपंचों के लिए, पंचों के लिए इस तरह की योग्यता क्यों रखनी चाहिए। लेकिन मित्रों, हमें समझना होगा कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों के सिचुएशन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये मैंने आपको कुछ तथ्य उपलब्ध कराए हैं, इन पर आप विचार करें और अपने अपने ढंग से फिर अपनी अपनी बात तैयार करें। मित्रों, वक्त हो चला है, न्यूज़पेपर्स की जहां तक क्लिपिंग का सवाल है, मैं काफी क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब मित्रों देख लेंगे। अब मैं फट से आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और आज मैं अनु प्रताप सिंह के मेल के लिए उन्हें विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूंगा। अनु, तुमने बहुत अच्छा मेल लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 15 दिन की क्लासेस करने के बाद उनमें कितने ज्यादा परिवर्तन आए हैं, पढ़ने लिखने की दृष्टि से भी, चेतना की दृष्टि से भी, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी, और पर्सनालिटी की दृष्टि से भी उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार के सदस्यों को भी यकीन नहीं होता है कि सच में अन्नू इस तरह का हो गया। तो अन्नू बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद अवगत कराने के लिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिवर्तन का यह सकारात्मक दौर और सकारात्मक दिशा लगातार आपके साथ बनी रहे और वो आपको आगे बढ़ाती रहे। कुछ अन्य मित्रों के नाम है दोस्तों, गौरव शर्मा धनबाद झारखंड से, रणवीर तिवारी, वंदना मोरे, प्रीति सिंह, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, रोहित श्रीवास्तव, तनु प्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, हर्षिता गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, पवन कुमार पंचकुला हरियाणा से, आकाश चौधरी, श्वेता राज चंपारण बिहार से, शालू राय, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, राहुल कुमार सिंह पुणे महाराष्ट्र से, दीपक गौतम और बाबा गौड़ा कर्नाटक से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।